डॉक्टर क्रेग कीनर रोमन्स व्याख्यान एक परिचय 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र एक परिचय है। रोमियो को लिखे पॉल के पत्र का पूरे इतिहास में एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। 2 तीमुथियुस 1:15 में हम पढ़ते हैं कि एशिया में जितने लोग थे वे सब पौलुस से दूर हो गए थे। आप पुराने नियम के भविष्यवक्ता यिर्मयाह के लिए एक प्रकार का दुखद अंत सोच सकते हैं, लेकिन यिर्मयाह की तरह पॉल की शिक्षाएं उसके बाद भी जीवित रहीं। अगली पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों में इसने इतिहास की दिशा बदल दी। रोमियों को लिखे पॉल के पत्र के मामले में हम देखते हैं कि पूरे इतिहास में इसका एक बड़ा प्रभाव पड़ा। हम ओरिजन को रोमन और अन्य लोगों पर एक बहुत ही मूल्यवान टिप्पणी लिखते हुए देखते हैं। हम हाल के दिनों में आते हैं, निश्चित रूप से मार्टिन लूथर पर। यह रोमन ही थे जिन्होंने मुक्ति के लिए ईसा ने जो किया था उस पर निर्भर रहने के अपने दृष्टिकोण में क्रांति ला दी। जॉन वेस्ली ने एल्डर्सगेट चैपल में पढ़ी जा रही रोमनों के लिए लूथर की प्रस्तावना को सुनकर अपने दिल को अजीब तरह से गर्व महसूस किया। रोमन आज भी ईसाइयों से बात करना जारी रखते हैं। ईसाई विद्वान, कैथोलिक, रूढ़िवादी और प्रोटेस्टेंट सभी मंडल भर में रोमन को एक शानदार कृति के रूप में देखते हैं जो पॉल की बहुत सारी शिक्षाओं को एक साथ खींचती है। अब इसका मतलब व्यवस्थित धर्मशास्त्र नहीं था जैसा कि अक्सर इसके साथ व्यवहार किया जाता है, लेकिन निश्चित रूप से जब हम अपने धर्मशास्त्र को व्यवस्थित करते हैं तो हम जो करते हैं उस पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह कई प्रमुख बिंदुओं को छूता है। हमें पहले शैली पत्र बनाम पत्रियों को देखने की जरूरत है। वह पहले का अंतर था। यह पपीरी पर आधारित था। कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, आपके पास सेनेका इत्यादि जैसे साहित्यिक पत्र हैं। उनके पास सेनेका, सिसरो जैसे साधारण पत्र भी थे और प्लिनी ने भी सामान्य पत्र लिखे थे, लेकिन कभी कभी आपके पास मार्सेला को सांत्वना पर सेनेका के पत्र या अन्य प्रकार के कार्यों जैसे पत्र निबंध भी होते थे। लेकिन जब लोगों ने पपीरी की खोज की तो वे बहुत उत्साहित हुए और एडोल्फ डेसमैन जैसे विद्वानों ने कहा, ठीक है, पॉल के पत्र पपीरी की तरह हैं। वे इस विशिष्ट स्तर पर नहीं हैं। हालांकि वास्तव में जब आप पपीरी की तुलना करते हैं तो वे औसत पपीरस दस्तावेजों की तरह नहीं दिखते हैं। शब्दावली प्रायः कोइन होती है। यह उस प्रकार की सामान्य शब्दावली है जिसका प्रयोग आम लोग करते हैं, लेकिन अधिकांश पपीरी का औसत लगभग 87 शब्द था। ठीक है, कहीं फिलेमोन की लंबाई के आसपास, थोड़ा अधिक, या तीसरा जॉन या उसके जैसा कुछ। सिसरो का औसत लगभग 295 शब्द था, जो 2530 शब्दों तक जा सकता था। सेनेका का औसत आमतौर पर लगभग 995 शब्द होता है, जो 4134 शब्द तक होता है। लेकिन पॉल का औसत लगभग 2495 शब्द था। उनका सबसे लंबा प्रचलित पत्र रोमन है, 7114 शब्द, जो पाठ्य भिन्नता पर निर्भर करता है, जो हम पपीरस पत्रों में पाते हैं उससे बहुत भिन्न है। वास्तव में पॉल केवल वही नहीं उपयोग करता है जो आप सामान्य पत्रों में पाते हैं। मेरा मतलब है, उसके पास एक पत्र पत्रिका फ्रेम, आरंभ और निष्कर्ष है, जैसा कि आपके पास पत्रों में होता है। लेकिन कुछ पत्रों में, जिनमें रोमन भी शामिल हैं, उन्हें तर्क वितर्क भी मिला है, जो कि वह नहीं है जो हम आम तौर पर सामान्य व्यावसायिक दस्तावेजों या शुभकामना पत्रों या पार्टियों के निमंत्रण पत्रों आदि में पाते हैं, जो हम आम तौर पर पपीरी में पाते हैं। लेकिन भाषणों या पत्र निबंधों में हम अक्सर कोई मामला बनाने की बजाय तर्क वितर्क ही पाते हैं। अब आज अलंकारिक आलोचकों ने बताया है कि पॉल के पत्र विशिष्ट नहीं हैं। वे सिसरो या प्लिनी या कुछ अन्य जैसे नहीं हैं, लेकिन दोनों ही उनके सिर के ऊपर से नहीं उतरे हैं। इनका निर्माण सावधानी पूर्वक किया गया था और हमें उस प्रतिबद्धता को ध्यान में रखना होगा जो उसके प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है। उनके पास शॉर्ट हैंड उपलब्ध नहीं था, कुछ आशुलिपि थी लेकिन शायद बहुत ज्यादा नहीं। यह अभी प्रचलन में आ रहा था और टेर्टियस को श्रुतलेख जो रोमियो 16:22 के अनुसार रोमियो को लिखने वाला मुंशी था, वह अपना अभिवादन स्वयं भेजता है, संभवतः स्वयं एक आस्तिक, संभवतः सामान्य श्रुतलेख देने और उसे लिखने पर पॉल को रोमियों को लिखवाने में 11 घंटे से अधिक का समय लगा होगा, भले ही हम इसे बहुत तेजी से पढ़ सकते हैं। दस्तावेज की लंबाई और उन चीजों के बारे में हम जो जानते हैं उसे देखते हुए संभवतः उन्होंने कम से कम 2 मसौदे पढ़े होंगे, पपीरस और संभवतः श्रम। यदि टर्टियस को इसके लिए भुगतान किया जाता तो लगभग 20.68 डेनेरी होता। रैंडी रिचर्ड्स ने हमें यह अनुमान दिया है। अमेरिका में आज की मुद्रा में यह लगभग $2,275 होगा, इसलिए हमें उन बातों को ध्यान में रखना होगा। यह सिर्फ उसके सिर के ऊपर से नहीं लिखा गया था। हाय बॉब, कैसे हो? मैं बढ़िया हूं, आपसे मिलने की उम्मीद है। यह कुछ ऐसा था जिस पर उन्होंने बहुत विचार किया, क्योंकि वह वास्तव में चर्च तक पहुंचने के लिए इस पत्र में सबसे अच्छा संचार करना चाहते थे, या रोम में संतों के रूप में चर्च, रोम में अलग अलग लोगों तक। हम पत्र कैसे पढ़ते हैं? खैर, आलंकारिक आलोचना और पत्र पत्रिका आलोचना के बीच इससे हमें पॉल के पत्रों में मदद मिली है। हम पत्रों और पत्रियों के बीच तकनीकी भेदों को छोड़ रहे हैं, जिनका वास्तव में पत्र निबंधों को छोड़कर व्यवहार में अक्सर पालन नहीं किया जाता था। लेकिन प्राचीन अलंकारिक पुस्तिकाएं अक्षरों की विभिन्न उपशैलियां प्रदान करती हैं। गलातियों के समान डांट के पत्र और फिलेमोन के समान सिफारिश के पत्र विभिन्न प्रकार के अक्षरों और अक्षरों के विभिन्न भागों को कैसे लिखा जाए, इसके लिए नियम थे। हालांकि ये पॉल के समय की तुलना में बहुत बाद में अलंकारिक पुस्तिकाओं में दिखाई देते हैं। वास्तव में अलंकारिक पुस्तिकाएं वास्तव में पॉल के समय से बहुत बाद तक पत्रों से निपटती नहीं हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो समान हैं, जिनसे हम सीख सकते हैं। पत्रों के भाग, खैर आश्चर्य की बात नहीं, आपके पास एक परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष है। अगर कुछ अच्छी तरह से लिखा गया है तो यह वास्तव में कोई बड़ा आश्चर्य नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि प्रस्तावनाएं किस प्रकार लिखी गई थीं, क्योंकि यह प्राचीन अक्षरों के बारे में हमारी जानकारी से मेल खाता है। इस मामले में लेखक पॉल एक प्रेरित है और फिर वह अपनी इच्छानुसार अपना वर्णन कर सकता है। दर्शकों के लिए, तो आज अंग्रेजी में आप डियर फलाम फला कह सकते हैं। ईमेल में हम अक्सर नमस्ते, फलाना आदि कहते हैं, या बस सभी तकनीकी भाषा को छोड़ दें और सीधे इसमें कूद पड़े। लेकिन उनके समय में लेखक का नाम, फिर आप कहेंगे कि किसको लिख रहे थे। इस मामले में संतों या पवित्र लोगों के लिए, रोम में अलग किए गए लोगों के लिए, और फिर नमस्कार। ग्रीक में विशिष्ट अभिवादन कैरेन था, जिसका अर्थ है अभिवादन। हालांकि इसे पॉल के पत्रों और नए नियम के कुछ अन्य पत्रों में रूपांतरित किया गया है। आपके पास अभी भी प्रेरितों के काम 15:23 में कैरेन है। आपके पास अभी भी याकूब 1:01 या 1:02 में कैरेन है। लेकिन आपके पास कुछ अन्य पत्रों में पॉल के पत्र हैं। आपके पास अलग अलग तरीके से 1 पत्रस और 2 पत्रस हैं। आपके पास यह प्रकाशित वाक्य 1 में है। तो यह कई अलग अलग प्रारंभिक ईसाई दस्तावेजों में है। पॉल शायद ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति रहे होंगे, हमें पता नहीं, लेकिन हमारे पास कायरे अभिवादन के बजाय कार्य अनुग्रह हैं। यह शब्द कुछ हद तक समान लगता है, लेकिन विशिष्ट ग्रीक अभिवादन को अपनाने में उनकी कृपा है। और शांति ने मानक यहूदी अभिवादन को अपनाया, जो हिब्रू में शालोम था। शालोम एलेकेम, आप सभी को शांति, या शालोम लेका, तुम्हें शांति मिले। लेकिन रोमनों में और अन्यत्र पॉल के लेखन में वह ग्रीक में लिख रहा है, तो यह कैरिनी है, ग्रीक में शांति। ग्रीक और यहूदी अभिवादनों का संयोजन करते हुए आपको अनुग्रह और शांति। पॉल ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, ईसाई ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे, हमें ऐसे कुछ अन्य लोग मिले हैं जो इन्हें कुछ यहूदी स्रोतों में मिलाते हैं, जहां वे कुछ ऐसा कहते हैं जैसे कि दया और शांति आपके साथ हो इत्यादि। लेकिन इस प्रवासी संदर्भ में ईसाई विशेष रूप से ऐसा कर रहे हैं। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शर्तें कैसे कार्य करती हैं। आप पर कृपा या आपको शांति, ये आशीर्वाद थे। वे वही थे जिन्हें कुछ विद्वानों ने इच्छा प्रार्थनाएं कहा है। यदि मैं कहता हूं भगवान आपको आशीर्वाद दें, तो मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को भी संबोधित कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान आपको आशीर्वाद दें। जैसा कि मैं कह रहा हूं भगवान आपका भला करें, ठीक उसी तरह जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दिया था, हो सकता है कि वह याकूब से बात कर रहा हो यह सोचकर कि वह एसाव से बात कर रहा है, लेकिन वह परमेश्वर का आह्वान कर रहा है। वह उम्मीद कर रहा है कि भगवान उसके लिए ऐसा करेगा। और जैसा कि पुराने नियम में हमें आशीर्वाद मिला है, यह भी जारी है, आपके शांति के साथ रहें। शांति का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप युद्ध में न हो, हालांकि इसमें वह भी शामिल हो सकता है, लेकिन अनुग्रह और शांति आपके साथ रहे। आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, मैं प्रार्थना करता हूं कि चीजें आपके लिए अच्छी हों। प्राचीन अक्षरों में प्रारंभिक प्रार्थना होना आम बात थी, जो अक्सर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना होती थी। आप समृद्ध हों और स्वस्थ रहें जैसे आपकी आत्मा समृद्ध होती है, जैसा 3 जॉन में है। प्राचीन पत्रों में यह सामान्य बात थी, लेकिन यहां जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि उनके पास उनके लिए धन्यवाद भी है, जो पॉल के पत्रों में आम है, अक्सर इस विषय का सारांश देता है, और अक्सर उनके लिए एक अलग प्रार्थना भी होती है, जैसा कि आप यहां पाएंगे रोमन के छंद 8 से शुरू होता है 1। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि यह अब अनुग्रह और शांति बन गया है, एक आशीर्वाद, न कि केवल परमपिता परमेश्वर की ओर से या प्रभु सेरापिस की ओर से आपके लिए अनुग्रह नहीं, जैसा कि कुछ अन्य जाति कहेंगे, क्योंकि वे अपनी ओर से आशीर्वाद देने वाले पत्र भेजेंगे भगवान का, परंतु यह हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। आपने देवता से आशीर्वाद दिया, और इसलिए यहीं पॉल के पत्रों में ठीक सामने वह उस ज्ञान का संकेत दे रहा है जिसे वह अपनी मंडलियों के साथ साझा करता है कि यीशु दिव्य है। ठीक है, आपके पास पत्र का परिचय है, और हम वापस आकर रोमियो 1 में पॉल के परिचय को कुछ अधिक विस्तार से देखेंगे। आपके पास पत्र का मुख्य भाग भी है, इसमें विभिन्न प्रकार के अक्षरों के लिए अलग अलग भाग होते हैं। कुछ अनेक प्रकार के पत्रों में सामान्य थे, अब हमारे पास यहां यह है कि जब आप तर्क वितर्क करते हैं तो यह आलंकारिक आलोचना होती है, जहां कुछ प्रकार के भाषण होते हैं और इसलिए कुछ प्रकार के तर्क वितर्क होते हैं। आपके पास कथा या आख्यान होता है, घटनाएं स्थिति की ओर ले जाती हैं। गलातियों 1 में आपके पास वह है, वह अपने लेखन से पहले की घटनाओं का वर्णन करता है। कभी कभी आपके पास थीसिस वक्तव्य होगा। थीसिस ग्रीक नाम है प्रोपोसिटियो, लैटिन में प्रस्ताव मामले को बताता है। संभवतः हमारे पास रोमियो में रोमियो एक श्लोक 16 और 17 में ऐसा है। और तब आप अक्सर फिर से आमतौर पर पत्रों में नहीं बल्कि भाषणों में कभी कभी सबूतों के साथ तर्क करते होंगे। कुछ विशेष प्रकार के भाषणों में आपके पास तर्क और प्रमाण होंगे, लैटिन में प्रोबेटियो। उदाहरण के लिए पॉल के मामले में धर्मग्रंथ के उद्धरण। खैर, इस बात पर बहस चल रही है कि पॉल अपने पत्रों में कितनी बयानबाजी का इस्तेमाल करता है। हम इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। हाँ, हम थोड़ी देर में इसके बारे में बात करेंगे। वह शायद उन्हें भाषणों की तरह व्यवस्थित नहीं करते, हालांकि यह भी बहस का विषय है। लेकिन वह निश्चित रूप से अलंकारिक उपकरणों का उपयोग करता है। हेर्मेन्यूटिक अक्षरों को समझने का तरीका है। पत्रों का उद्देश्य संचार था। पत्र निबंध अधिक सामान्य पत्र हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश पत्रों का उद्देश्य किसी विशेष श्रोता तक कुछ संप्रेषित करना होता था। ठीक है, जब आपके पास माध्यमिक संचार होता है, कुछ ऐसा जो आपके अलावा किसी अन्य श्रोता को संप्रेषित किया गया था, तो यह आपको उस श्रोता के बारे में कुछ पता लगाने में मदद करता है, ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें कि क्या संप्रेषित किया जा रहा था। प्रासंगिकता सिद्धांत बताता है कि हम अक्सर ऐसे तरीकों से संवाद करते हैं जो अपने आप में अधूरा होगा। सामाजिक संदर्भों में शब्दों के अर्थ होते हैं। अगर मैं कहता हूँ कॉफी कृपया, ठीक है, कॉफी कृपया इसका संक्षिप्त रूप है, क्या आप कृपया मुझे कॉफी देंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ क्या आप कृपया मुझे वेटर या वेट्रेस को कॉफी देंगे, और मैं इसे पूरी तरह से बताता हूँ, तो यह अजीब लग सकता है यदि वे कॉफी के आदि हैं, कृपया। यदि मैं 2001 से संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 से 11 की बात करता हूँ, तो हर कोई जानता है कि जब हम 9 से 11 कहते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन अगर भविष्य में कोई पावर ग्रिड बंद होने और कागजी प्रतियों को छोड़कर बाकी सब कुछ खो जाने के बाद लिख रहा है, और उसे अमेरिकी संदर्भ में 9 से 11 का क्या मतलब है, यह पता लगाने के लिए अब से एक या दो सदी बाद शोध करना होगा, तो वे 9 से 11 पर पृष्ठभूमि अनुसंधान किए बिना पता नहीं चलेगा। खैर, पॉल अलग अलग मंडलियों को पत्र लिखता है, और इसलिए यदि हमें पृष्ठभूमि मिलेगी तो हम उन पत्रों को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मेरे लिए, जब मैं था, मैं बस कुछ वर्षों के लिए ईसाई रहा था, एक गैर ईसाई अछूत पृष्ठभूमि से परिवर्तित हुआ था, लेकिन मैं एक दिन में बाइबल के 40 अध्याय पढ़ रहा था और मैंने देखना शुरू कर दिया, वाह, पृष्ठभूमि फर्क पड़ता है, क्योंकि यह वास्तव में रोमनों में था। रोमियो 1:7 पॉल कहता है कि वह ये बातें रोम के विश्वासियों को लिख रहा है। और मैं ऐसा कह रहा था, ठीक है ठीक है, मैं इस श्लोक को यहाँ और इस श्लोक को यहाँ याद कर रहा हूँ, लेकिन मैं बीच में इनमें से कुछ छंदों को अनदेखा कर रहा हूँ। यदि पॉल कहता है कि वह इसे रोम की कलीसिया को लिख रहा है, तो संभावना है कि रोम के विश्वासियों को कुछ मुद्दों के बारे में पता है जिन्हें वह संबोधित कर रहा है। वे जानते हैं कि वह इसे क्यों संबोधित कर रहे हैं। वे जानते हैं कि कभी कभी इन बातों से उसका क्या मतलब होता है। कुछ चीजें जिन्हें उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वे सामान्य साझा संस्कृति का हिस्सा हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। और यही वह कारण था कि मैंने प्राचीन संस्कृति को खोदना शुरू किया। यही कारण है कि मैंने IVP बाइबल पृष्ठभूमि टिप्पणी लिखी। यह उसी के कारण है कि मैं अंततः आगे बढ़ा और बाइबल का विद्वान बन गया, क्योंकि अन्यथा मैं बस अपने दम पर बाइबल पढ़ता और उसका प्रचार करता। लेकिन पृष्ठभूमि के लिए मुझे और अधिक शोध करने की जरूरत थी और उस शोध को दूसरों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करना था ताकि वे इसे अपनी उंगलियों पर रख सकें। पॉल कुछ उन्हीं सिद्धांतों को लागू करता है जिन्हें वह रोमनों में लागू करता है। वह उन्हीं सिद्धांतों में से कुछ को अन्यत्र लागू करता है, लेकिन रोम की विशेष स्थिति उन सामान्य सिद्धांतों को इस पत्र के लिए ठोस बनाती है, और यह हमें एक मॉडल भी देता है कि कैसे हमें आज भी अपनी सेटिंग में पॉल के सिद्धांतों को ठोस रूप से लागू करने की आवश्यकता है। जब हम प्राचीन काल के पत्रों या अन्य चीजों को देखते हैं तो हमें इसे ध्यान में रखना होगा। मेरा मतलब है कि यह कुछ हद तक प्राचीन दार्शनिकों और अन्य संतों पर भी लागू हो सकता है, लेकिन यहाँ और भी अधिक हम में से उन लोगों के लिए जो ईसाई हैं, जो बाइबल को ईश्वर के वचन के रूप में सुनते हैं। हम नैतिक मुद्दों और केवल सांस्कृतिक मुद्दों के बीच अंतर करना चाहते हैं। कभी कभी हमारे पास पार सांस्कृतिक नैतिक मानदंड होते हैं। उदाहरण के लिए, पॉल के पास रोमियो 1:28-31, 1 कुरिन्थियों 6:09 और 10 गलातियों 5:19-21 में उपसूचियां हैं। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी बोर्ड भर में काफी निंदा की जाती है और वह नियमित रूप से उनकी निंदा करता है। उनमें से कई उनके पत्रों में यौन पाप, बदनामी, गपशप, लालच इत्यादि। ट्रांसकल्चरल नैतिक मानदंड। अब जब मैं कहता हूँ कि कुछ चीजें एक विशेष सांस्कृतिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती हैं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बाइबल में चीजें हर समय के लिए नहीं हैं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि बाइबल में सभी चीजें सभी परिस्थितियों के लिए नहीं हैं। यदि हम उन्हें सही ढंग से लागू करना चाहते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम उन्हें समान परिस्थितियों में लागू करें, और इसलिए संस्कृति को देखना महत्वपूर्ण है कि पार सांस्कृतिक मानदंड क्या हैं, और यह भी देखना कि वह उन्हें कैसे ठोस रूप से लागू करता है ताकि हम उन्हें विभिन्न सांस्कृतिक सेटिंग्स में फिर से ठोस रूप से लागू कर सकें। पॉल ने हमें यह नहीं बताया कि परमाणु हथियारों के बारे में क्या करना है। उन्होंने आज कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक मुद्दों को संबोधित नहीं किया। डिडाचे गर्भपात के बारे में बात करता है, लेकिन पॉल अपने पत्रों में विशेष रूप से इसका नाम नहीं लेता है। यह थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि वह ऐसा नहीं करते, लेकिन आज ऐसे मुद्दे हैं जिनका हम समाधान करना चाहते हैं। हमें इन पत्रों में सिद्धांतों की तलाश करनी होगी। ठीक है, आपके पास ट्रांसकल्चरल नैतिक मानदंड हैं, लेकिन संभावना है कि अगर पॉल अलग अलग मार्गों में अलग अलग प्रथाओं की अनुमति देता है तो यह ट्रांसकल्चरल नहीं है। और संपूर्ण बाइबल के लिए, बाइबल धर्मशास्त्र के लिए, यदि हमारे पास अलग अलग मार्ग हैं जो विभिन्न प्रथाओं की अनुमति देते हैं। 1 तीमुथियुस 5:14, महिलाएं घर में एकांत में हैं, और इसे इफिसुस में मैटरन के लिए उपयुक्त भूमिका माना जाता था, जहां 1 तीमुथियुस 5:14 में 1 तीमुथियुस को संबोधित किया गया है। घर से बाहर काम करने वाली महिलाएं। खैर, हमारे पास यह नीतिवचन 31:16, उत्पत्ति 29:9 और श्रेष्ठ गीत 1:06 में है। यह एक अलग संस्कृति है। मैं इसे कुछ अन्य लैंगिक मुद्दों पर भी लागू करूंगा, जैसे 1 तीमुथियुस 2:12 की न्यायाधीश 4:04 से तुलना करना इत्यादि। इस पर हर कोई मुझसे सहमत नहीं है। हम कुछ विवरणों में सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को कैसे लागू करते हैं, इस पर बहुत सारे मतभेद हैं, लेकिन रोमनों में अधिकांश मुद्दों पर हम आम सहमति पाएंगे। ऐसे कुछ मुद्दे होंगे जिन पर आज कुछ प्रमुख बहसें चल रही होंगी, और मैं कम से कम उन्हें आपको बताने का प्रयास करूंगा। हमें लेखक के लिए उपलब्ध सांस्कृतिक विकल्पों को समझने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने उस युग में लिखा था जब कोई भी पूरी गुलामी को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा था, कि वे उस मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करते हैं जिसे कोई नहीं उठा रहा था। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी ने इस मुद्दे को उठाया होता तो वे गुलामी समर्थकों के पक्ष में होते। मुझे लगता है कि मैं इफिसियों की ओर से एक बहुत मजबूत तर्क दे सकता हूं कि जो उन्मूलनवादी गुलामी के खिलाफ थे, उन्होंने पॉल की भावना को उन लोगों की तुलना में कहीं अधिक सही ढंग से समझा जो गुलामी के समर्थन में पॉल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। वह एक ऐसी स्थिति को संबोधित करता है जो मौजूद है, लेकिन जो उसने सोचा था कि अस्तित्व में होना चाहिए था उसके संदर्भ में, जब वह आपके स्वामियों द्वारा उनके साथ वही चीजें करने की बात करता है, इफिसियों 6:9, और कहता है कि स्वर्ग में हमारा एक ही स्वामी है। खैर, मुझे लगता है कि इस तरह से पता चलता है कि पॉल अपने अधिकांश समकालीनों की तुलना में अधिक कट्टरपंथी थे, और मैंने यह तर्क दिया है कि यह अन्यत्र छपा है। लेकिन कई अलग अलग चीजें विवादास्पद हैं, न केवल वह बल्कि इफिसियों का लेखकत्व भी, हालांकि मैं उन लोगों से सहमत हूं जो तर्क देते हैं कि यह पॉलीन है। लेकिन इसके विपरीत, जबकि बाइबल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग दिशाओं की ओर इशारा करती हैं, यह सुझाव देती हैं कि सांस्कृतिक मुद्दे चल रहे हैं। बाइबल कभी कभी संस्कृति के कुछ तत्वों के खिलाफ सर्वसम्मति से बोलती है। पॉल के समय में यूनानियों ने विवाह पूर्व यौन संबंध और समलैंगिक संभोग के संबंध में विभिन्न विचार रखे, लेकिन बाइबल उन सभी अनुच्छेदों में विषमलैंगिक विवाह के बाहर सभी संभोगों की निंदा करती है जिनमें उनका उल्लेख है। इससे पता चलता है कि यह कुछ ऐसा है जो केवल एक विशेष सांस्कृतिक स्थिति के बजाय संपूर्ण बाइबल धर्मशास्त्र को प्रतिबिंबित करता है। इस पर हर चीज की तरह कुछ लोगों द्वारा बहस की जाती है, इसलिए मैं उनमें से कुछ का अधिक विस्तार से पता लगाऊंगा, लेकिन मेरा मानना है कि यह वह दिशा है जो इंगित करती है। प्राचीन काल में अलंकारिकता व्यापक थी, यह प्रमुख अनुशासन था। तृतीयक प्रशिक्षण के दो रूप, उन्नत प्रशिक्षण के दो रूप, दर्शन शास्त्र और अलंकारिकता थे। बाजार और नागरिक सभाओं में वक्ता अक्सर दर्शन शास्त्र की तुलना में बयानबाजी को अधिक महत्व देते थे। अधिक लोग बयानबाजी में लग गए। वक्ताओं को बाजार में, निश्चित रूप से नागरिक सभाओं और सार्वजनिक प्रतियोगिताओं में अलंकारिक सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बोलते हुए सुना जाएगा। इसलिए अलंकारिक उपकरणों का उपयोग करके लोगों को सुनने का आदि होने के लिए या अपने तर्क में एक निश्चित संरचना का पालन करने वाले लोगों को सुनने का आदि होने के लिए आपको वास्तव में अलंकार में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। उस समय यह साक्षर संचार का ही एक हिस्सा था। बेशक विभिन्न शैलियों ने अलग अलग संरचनाओं का उपयोग किया। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो मार्ग के सुसमाचार या कुछ इस तरह की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं जैसे कि यह एक भाषण था। मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मतलब है। प्राचीन जीवनियां इस प्रकार व्यवस्थित नहीं थीं। लेकिन तर्कवितर्क अलंकारिकता के कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। यह मामला इतना बढ़ गया कि दूसरी शताब्दी में, दूसरे सोफिस्टिक के उत्कर्ष में, नए नियम के कुछ भाग और निश्चित रूप से पुराने नियम का ग्रीक अनुवाद उन ईसाइयों के लिए शर्मनाक हो गया जो प्रेरित होकर इसका बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इन बाद के मानकों के अनुसार लोग इन पहले के दस्तावेजों को देख रहे थे और कह रहे थे, नहीं, यह सटीक अटारी एथेनियन, पुराने शास्त्रीय एथेनियन तरीके से बयानबाजी का उपयोग करने का तरीका होना चाहिए था। खैर, यह एक तरह से कालानुक्रमिक है क्योंकि यह उन समयों और स्थानों में संचार का प्रमुख तरीका नहीं था जहां ये दस्तावेज लिखे गए थे, हालांकि हमारे पास नए नियम में कुछ इतिहासवाद हैं। लेकिन चर्च के पिताओं को इसका समाधान करना पड़ा, और चर्च के पिता अक्सर अलंकारिक आलोचना का प्रयोग करते थे क्योंकि उनमें से कई अलंकारिकता में प्रशिक्षित थे, और इसलिए उन्होंने अक्षरों को समझने में इसका उपयोग किया। मेलानकथन, जो लूथर के उत्तराधिकारी थे, को एक मानवतावादी के रूप में प्रशिक्षित किया गया था और इसलिए उन्होंने अलंकारिक आलोचना का भी अभ्यास किया। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में यह फिर से उपयोग में आया। पॉल के सर्कल में उम्मीदें उतनी अधिक नहीं थीं जितनी वक्ताओं के लिए होती, लेकिन पॉल अभी भी कुछ अलंकारिक उपकरणों का उपयोग करता है। अब समस्या यह है कि पॉल भाषण नहीं लिख रहे हैं, वह पत्र लिख रहा है, और इसलिए यहां अलंकारिक आलोचकों की आलोचना हुई है। इस अवधि में अलंकारिक पुस्तिकाएं अक्षरों को छोड़ देती हैं। बाद की अलंकारिक पुस्तिकाएं उन्हें भाषण के रूप में नहीं मानती हैं। हमारे पास अलंकारिक पुस्तिकाओं में भाषण की जो रूपरेखा है, वह अधिकांश भाषणों में फिट भी नहीं बैठती है, क्योंकि एक बार वक्ताओं को इसमें प्रशिक्षित किया गया, एक बार जब उन्होंने यह सीख लिया कि इसे कैसे करना है, तो वे उन्हें आवश्यकतानुसार अनुकूलित करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। तो आपको वास्तविक भाषणों के साथ बहुत सारे अंतर मिलते हैं। यही कारण है कि न केवल अलंकारिक पुस्तिकाएं पढ़ना अच्छा है, बल्कि प्राचीन भाषण भी पढ़ना अच्छा है। वक्ता के पत्र, और इस मामले में शायद यह सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन है, वक्ता के पत्र, जैसे दूसरी शताब्दी में सिसरो, प्लिनी या फ्रांतो के पत्र। सिसरो पूर्व ईसाई है, प्लिनी दूसरी शताब्दी का प्रारंभिक काल है, फ्रांतो दूसरी शताब्दी के मध्य का है। उनके पत्र भाषणों जैसे नहीं थे। वास्तव में मुझे सिसरो और प्लिनी के पत्रों की तुलना में रोमनों, 1 कोरिन्थियों और 2 कोरिन्थियों में अधिक अलंकारिक उपकरण मिलते हैं, क्योंकि वे भाषण नहीं दे रहे थे, और जिस तरह से आपने भाषण लिखे थे, आपको पत्र नहीं लिखना चाहिए था। तो प्राचीन अलंकार हमें पॉल के पत्रों को समझने में कैसे मदद कर सकता है, यदि है भी तो? खैर, हमारे पास पॉल में कुछ अलंकार हैं, क्योंकि पॉल के पत्र, कम से कम पॉल के अधिकांश पत्र, सामान्य पत्र नहीं हैं। पॉल के अधिकांश पत्र जो हमारे लिए संरक्षित किए गए हैं, उनमें पर्याप्त तर्क वितर्क शामिल हैं, जैसे कि आप एक पत्र निबंध में पाएंगे। इसलिए भले ही हम इन पत्रों को केवल भाषणों की तरह रेखांकित करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, कम से कम उनमें से अधिकांश हम अलंकारिक उपकरणों के मूल्य का पता लगाने जा रहे हैं। कभी कभी पॉल एक ही वाक्यांश या एक ही ध्वनि के साथ क्रमिक उपवाक्यों को समाप्त कर देगा। वह समान शब्दों के साथ क्रमिक उपवाक्यों की शुरुआत करेगा। वे मानक अलंकारिक उपकरण थे, और वास्तव में एक बार जब आप उनकी तलाश शुरू करते हैं, तो आप पॉल के पत्रों में उनमें से बहुत से पाते हैं। और कुछ अन्य जिन्होंने प्राचीन वक्तृता के संदर्भ में इसकी खोज नहीं की है, वे अभी भी भाषण के इन अलंकारों और बोलने के इन तरीकों को पॉल के पत्रों में मौखिक संचार कहते हैं। प्राचीन अलंकारिकता का सहारा लेकर हमने जो किया है, वह केवल यह कहना है कि पॉल अकेला नहीं था जिसने ऐसा किया था। आइए देखें कि कैसे कुछ अन्य लोगों ने भी इन अलंकारिक उपकरणों का उपयोग किया, न केवल भाषणों में बल्कि कुछ अन्य सेटिंग्स में भी। हालांकि पॉल इसे आपकी अपेक्षा से अधिक पत्रों में करता है, क्योंकि वह तर्क वितर्क करने में भी अच्छा है। तार्सस में शिक्षा, जहां से पॉल थे, बुक ऑफ एक्ट्स के अनुसार प्राचीन काल में सबसे बड़ा दार्शनिक केंद्र माना जाता था। दूसरों ने कहा होगा कि यह अलेक्जेंड्रिया था, लेकिन इस अवधि तक दोनों ने एथेंस को पीछे छोड़ दिया था। बहुत सारे स्टोइक थे। जब मैं कहता हूं कि इस अवधि में दार्शनिकों के बीच प्रमुख दार्शनिक अभिविन्यास प्रचलित था, तो रूढ़िवाद प्रचलित था। यह दार्शनिक रुझानों में सबसे लोकप्रिय है, एपिक्यूरियनवाद से भी अधिक, प्लेटोवाद से भी अधिक, जो बाद में फिर से प्रभावी हो गया। हमें उनके पत्रों में पॉल और स्टोइकिज्म के साथ साथ पॉल और कभी कभी प्लेटोनिज्म के बीच संपर्क के कई बिंदु मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि स्टोइकिज्म अधिक बार होता है। मैं यह तर्क नहीं दूंगा कि पॉल ने स्टोइक के रूप में कोई प्रशिक्षण लिया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब्राहम मलहरबे, जो येल डिवाइनिटी स्कूल में प्रोफेसर हुआ करते थे, मुझे लगता है कि मलहरबे ने इसे अपनी किताबों में से एक में अच्छी तरह से रखा है, जहां वह पॉल और लोकप्रिय दार्शनिकों के बारे में बात करते हैं। वे लोकप्रिय दर्शन की भाषा जानते थे। वह लंबे समय तक मंत्री रहे थे। वह काफी समय से लोगों से बातचीत कर रहे थे। वह उस भाषा को जानता था जिससे वे संबंधित हो सकते थे, और वह जानता था कि चीजों को अपने समय की भाषा में कैसे व्यक्त किया जाए और अपने दर्शकों के लिए कैसे प्रासंगिक बनाया जाए। और हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए। टार्सस में बयानबाजी भी एक उन्नत अनुशासन था। टार्सियन अक्सर अपना उन्नत अनुशासन विदेश में करते थे। और निःसंदेह, यदि आप यहूदी होते तो आप अपना उन्नत अनुशासन संभवतः टोरा में करना चाहेंगे, और यरूशलेम से बेहतर जगह क्या हो सकती है। लेकिन अधिनियम 22:3 से प्रतीत होता है कि पॉल वास्तव में उन्नत स्तर से पहले, तृतीयक स्तर से पहले विदेश गया था। यह शायद अन्य चीजों से है जो हम अधिनियमों में देखते हैं, जिन्हें मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। मैंने अधिनियमों पर 4 खंडों वाली टिप्पणी लिखी। एट्स से पता चलता है कि शायद जब वह काफी छोटा था तब उसका परिवार यरूशलेम चला गया था, इसलिए एक मायने में उसे दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ मिला। और यरूशलेम में यदि उसने गमलीएल के साथ अध्ययन किया, जैसा कि अधिनियम 22:3 कहता है, संभवतः साधन संपन्न परिवार से आता है, उन्हें अच्छी शिक्षा मिली। गमलीएल यहूदी परंपरा के अनुसार आपको न केवल टोरा में शिक्षित किया जा सकता है, बल्कि आपको ग्रीक से संबंधित कुछ चीजों में भी शिक्षित किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि पॉल को ग्रीक क्लासिक्स का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है। वह उन्हें बहुत ही कम उद्धृत करता है, और जहां वह उन्हें उद्धृत करता है, यह उस तरह की चीज है जो आमतौर पर उद्धरणों के मैनुअल आदि से जानी जाती थी। लेकिन वह हर जगह पुराने नियम के ग्रीक अनुवाद सेप्टुआजेंट का हवाला देते हैं, और निस्संदेह उन्होंने यही किया अपने उन्नत प्रशिक्षण में। लेकिन आज एक उपदेशक की तरह, जिसके पास बाइबल में उन्नत प्रशिक्षण हो सकता है, लेकिन कम से कम एक उपदेश में, समलैंगिकता में एक या दो पाठ्यक्रम। खैर, पॉल ने शायद निचले स्तर पर बोलने का कुछ प्रशिक्षण लिया था, और जो भी प्रशिक्षण उसके पास था उसे निश्चित रूप से वर्षों में विकसित होने का अवसर मिला, क्योंकि वह अक्सर ऐसा कर रहा था। यरूशलेम में एक यूनानी भाषी यहूदी के रूप में पॉल को अपनी शिक्षा के मामले में दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ मिलना चाहिए था। गलातियों 1:14 में गमलीएल के चरणों में गमलीएल के साथ अध्ययन करते हुए पॉल कहता है कि वह अपने समकालीनों से आगे बढ़ रहा था। तो वह शास्त्र में प्रशिक्षित है। संभवतः वह कम से कम कुछ बयानबाजी के संपर्क में तो है। वह कुछ दर्शन शास्त्र के बारे में सीखता है। उन्हें यूनानी बौद्धिक विमर्श में सुविधा है। यहूदिया में वह केवल यरूशलेम में उपलब्ध था। अमीर लोगों ने अपने बच्चों को अलेक्जेंड्रिया, एथेंस, इफिसस या टार्सस भेजा, लेकिन टोरा के लिए, विशेष रूप से ग्रीक में, यरूशलेम जाने का स्थान था, और कुछ यरूशलेम में पढ़ा सकते थे। जोसेफस धारा प्रवाह था। उनकी ग्रीक भाषा बहुत धारा प्रवाह है। उनका कहना है कि उनकी भाषा के कारण उनकी मदद के लिए उनके पास एक स्टाइल एडिटर था। शायद इसका मतलब यह है कि उनके कोइन पर बहुत अधिक सेमिटिक प्रभाव था। ठीक है, मुझे इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि कोइन कहां से आता है, लेकिन किसी भी मामले में जोसेफस के पास ग्रीक में मदद करने के लिए शायद एक स्टाइल एडिटर था, लेकिन जोसेफस स्पष्ट रूप से ग्रीक जानता था। हम उसे ऐसी सेटिंग में देखते हैं जहां वह ग्रीक में लोगों से बात कर रहा है। तो जोसेफस ग्रीक में पारंगत था। गैमलियल का परिवार स्पष्ट रूप से ग्रीक में पारंगत था और प्रवासी आप्रवासी निश्चित रूप से ग्रीक भी जानते होंगे। प्रोफेसरों के साथ पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर हमेशा सामान्य लोग होते हैं, जैसा कि आप मुझे देखकर बता सकते हैं। लेकिन किसी भी मामले में पॉल के पत्र इस बात का सबूत देते हैं कि वास्तव में वह काफी अच्छी तरह से शिक्षित था। मेरा मतलब है, वह अभिजात्य वर्ग का हिस्सा नहीं था, वह सिसरो नहीं था, वह सेनेका नहीं था। बयानबाजी में वह कोई मूर्ख नहीं थे, हालांकि विषय वस्तु में उनके पास बहुत उच्च स्तरीय तर्क वितर्क है। लेकिन अगर आप उसकी तुलना पपीरी सामान्य व्यावसायिक दस्तावेजों से करें तो पॉल के पास सिर्फ व्याकरणिक शिक्षा नहीं थी, शिक्षा का निम्नतम स्तर। पॉल के पास स्पष्ट रूप से उससे अधिक शिक्षा थी। हालांकि उनके पत्रों की सामग्री अत्यधिक सम्मानित यूनानी वक्ताओं से भिन्न है। जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारे पास बहुत सारे शास्त्रीय उद्धरण नहीं हैं। उस समय पढ़े लिखे लोग इसी तरह दिखावा करते थे। उनकी शिक्षा अनुचित क्षणों से हुई, जिसमें पिछले लेखकों की चुटकी भी शामिल थी। इसके बजाय यह दबे हुए उद्धरणों से भरा है। पॉल बयानबाजी के प्रोफेसर नहीं थे, वह कोई पेशेवर वक्ता नहीं थे, वह वक्ता नहीं थे। मैं उनकी तुलना एक ऐसे सेमिनारियन से करना चाहता हूं जिसके पास कुछ समलैंगिक पाठ्यक्रम थे और वह बाइबल का विशेषज्ञ था। यह मेरे अपने पूर्वाग्रह को प्रतिबिंबित कर सकता है, क्योंकि क्या लगता है, मैं बाइबल का प्रमुख था। लेकिन किसी भी मामले में विद्वता की पिछली शताब्दी में पॉल के कुछ चित्र लगभग एक सदी पहले, कुछ लोग यह तर्क दे रहे थे कि पॉल एक हेलेनिस्टिक यहूदी था जो यरूशलेम से अपरिचित था और वास्तव में यरूशलेम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था। मोंटेफियोर, जिनके पास बहुत सारी अच्छी जानकारी और बहुत सी चीजें थीं, ने यह सुझाव दिया। लेकिन वह यहूदिया और गैलील के यूनानीकरण को कम आंकते हैं, जैसा कि कई विद्वानों ने दिखाया है, जिसकी शुरुआत 1960 के दशक में और वास्तव में पहले कुछ यहूदी विद्वानों से हुई थी। शाउल लिबरमैन, हालांकि उस अवधि में अन्य विद्वान चेरिकोवर और अन्य, लेकिन विशेष रूप से 1970 के दशक में मार्टिन हेंगेल द्वारा स्थापित कि यूनानीकरण पहली शताब्दी तक बहुत दूर चला गया था। यह यहूदिया और निचली गलील के साथ साथ कई अन्य स्थानों में भी सच था। यह कहने की जरूरत नहीं है कि यह यहूदिया और गलील के बाहर प्रवासी भारतीयों के समान ही है, लेकिन वहां पहले से ही बहुत अधिक यूनानीकरण था। तो पॉल अभी भी वह व्यक्ति हो सकता है जो यहूदिया में फलाफूला, जो यरूशलेम में फलाफूला। साथ ही पॉल की अपनी रचनाएं भी। फिलिप्पियों 3:05, पौलुस हमें बताता है कि वह एक फरीसी, फरीसियों का फरीसी था। खैर, जब हम प्राचीन साहित्य में कहीं और फरीसियों के बारे में पढ़ते हैं, तो हम उनके बारे में यरूशलेम में भी पढ़ते हैं। वह इब्रानियों का इब्रानी था। तो वही मार्ग पॉल बताते हैं कि उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग मिली थी। गलातियों 1:13-14 में वह हमें यह भी बताता है कि उसके पास उन्नत यहूदी शिक्षा थी। वह हमें यह भी बताता है कि उसने यहूदिया में चर्च पर अत्याचार किया, गलातियों 1:22-23। वह सिर्फ प्रवासी भारतीयों से नहीं आया था और सिर्फ दिखावा करता था यहूदिया में रहने का कोई अन्य कारण बताए बिना यहूदिया में चर्च पर अत्याचार करने के लिए यरूशलेम में। ऐसा होने से पहले ही वह यहूदिया में था। एक अन्य दृष्टिकोण पॉल को एक फिलिस्तीनी यहूदी के रूप में देखना था, जैसा कि कई लोग कहते हैं, W.D. डेविस और अन्य लोगों के साथ पॉल का एक रब्बी फरीसी चित्र। W.D. डेविस ने तर्क दिया कि पॉल एक मसीहाई फरीसी था, एक फरीसी जो मानता था कि मसीहा आया था। और E.P. सैंडर्स, जो मेरे अपने प्रोफेसरों में से एक थे, मेरे डॉक्टरेट कार्य में मेरे अपने गुरुओं में से एक थे, ईपी सैंडर्स का तर्क है कि उनके पास पॉल और फिलिस्तीनी यहूदीवाद नामक एक पुस्तक है और वह पॉल को उस संदर्भ में रखते हैं। अब भले ही यह एड सैंडर्स की विशेषज्ञता है, पॉल और फिलिस्तीनी यहूदी धर्म या जीसस और फिलिस्तीनी यहूदी धर्म, वह इसे नए नियम की पूरी पृष्ठभूमि तक सीमित नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे जो बताया वह एक बार था। आप जानते हैं, मूल रूप से जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वह जो करना चाहते थे वह फिलिस्तीनी और हेलेनिस्टिक यहूदी धर्म की तुलना करना था, लेकिन जीवन केवल इतना लंबा है और वह इन सब तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन वह कहते हैं, आप जानते हैं, मैं वास्तव में इब्राहिम एल हर्बी ने एपिस्टल्स इत्यादि के साथ जो किया है उसका सम्मान करता हूं। इसलिए ये परस्पर अनन्य विकल्प नहीं है। पॉल के पास हेलेनिस्टिक यहूदी पृष्ठभूमि थी, उनकी पृष्ठभूमि फिलिस्तीनी यहूदी भी थी, और साथ ही कुछ ऐसा जो येल स्कूल से प्रचलित था। मेरे पास ड्यूक में ईपी सैंडर्स थे जो महानगरीय ग्रीको रोमन पृष्ठभूमि के थे। यह तर्क पहले एडविन जज द्वारा दिया गया था, जो न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाने वाले एक क्लासिकिस्ट थे। मुझे कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया में उनसे बात करने का सौभाग्य मिला था, और अब्राहम एल हर्बी, जिन्होंने उनमें से कुछ उनसे लिया, और येल में वेन मीक्स। खैर, बयानबाजी पर भी व्यापक फोकस है, उदाहरण के लिए रोनाल्ड हॉक, बेन विद्रिंगटन और अन्य, और दर्शन। उदाहरण के लिए टुल्स अम्बर्ग पेडरसन एक क्लासिकिस्ट हैं जो स्टोइक दर्शन के विद्वान हैं। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि ठीक है, कोई भी हर उस बात से सहमत नहीं है जो हर कोई कहता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हम इनमें से कई लोगों से सीख सकते हैं। इसके अलावा पत्र पत्रिका की पृष्ठभूमि पर जेफ वाइमा और स्टैनली पोर्टर, जिस प्रकार उस समय पत्रियां लिखी जाती थीं, हम इनमें से कई अलग अलग विद्वानों और कई अन्य विद्वानों से सीख सकते हैं। कुछ को सूचीबद्ध करना शुरू करने का खतरा यह है कि मैं उनमें से बहुतों को छोड़ रहा हूं, जिनमें मेरे कुछ अच्छे दोस्त लिंडा बेलेविले और अन्य शामिल हैं। लेकिन पॉल इन सभी पृष्ठभूमियों को मिश्रित करता है। मेरा मतलब है, ये सब उसकी पृष्ठभूमि का हिस्सा हैं। उसके पास जो कुछ भी है वह अपनी संस्कृति तक पहुंचने के लिए उसका उपयोग करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमें उन संस्कृतियों को ध्यान में रखने की कोशिश करनी चाहिए जिन तक हम पहुंच रहे हैं और भगवान के सच्चे संदेश से समझौता किए बिना सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए जो हमें धर्म ग्रंथों में दिया गया है। तोरा में पॉल अपने आह्वान से पहले तोरा के प्रति, कानून के प्रति समर्पित था, लेकिन उसे पता चला कि इस तरह का उत्साह उसे ईश्वर की ओर नहीं, बल्कि वास्तव में ईश्वर जो कर रहा था उसके खिलाफ विद्रोह करने के लिए ले गया था। मुझे लगता है कि मैं इसे पहचान सकता हूं, क्योंकि मैं अपने धर्म परिवर्तन से पहले नास्तिक था और मुझे अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था, और आखिरकार मुझे पता चला कि मेरी बुद्धि मुझे बिल्कुल गलत रास्ते पर ले गई थी, और मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में सबसे बुद्धिमानी इस बात पर भरोसा करना है कि ईश्वर हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चीजों का पता लगाने की कोशिश नहीं करता रहता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पवित्र शास्त्र कहता है कि छुपी हुई चीजें परमेश्वर की हैं, लेकिन यह भी कहता है कि परमेश्वर चीजों को छिपाता है लेकिन राजा चीजों को खोज निकालते हैं। मैं कोई राजा नहीं हूं, लेकिन उसने हमें एक कारण से हमारी बुद्धि दी है। हम चीजें खोज सकते हैं। हम रोमियो को लिखे पॉल के पत्र और पॉल के कुछ अन्य पत्रों, फिलिप्पियों, एक कुरिन्थियों अध्याय दो इत्यादि में मन के बारे में बहुत कुछ देखने जा रहे हैं, लेकिन आत्मा द्वारा सूचित मन, ईश्वर द्वारा संचालित मन, वह मन है जो सबसे अच्छे रास्ते पर जाने वाला है। क्योंकि याद रखें, जैसा नीतिवचन कहता है, प्रभु का भय मानना बुद्धि और ज्ञान की शुरुआत है। इसलिए पॉल टोरा के प्रति समर्पित था। उन्होंने इसका अध्ययन किया, लेकिन उनके पास गलत ढांचा था, और बुद्धि कभी कभी विवरणों को हल कर सकती है। लेकिन अगर हमें गलत समग्र ढांचा मिला है, तो हम बड़ी तस्वीर से चूक सकते हैं, जो बहुत अधिक मायने रखता है। और फिर जब हम आस्तिक हो जाते हैं, वैसे भी जब मैं नास्तिक था तब की तुलना में अब चीजें बहुत अधिक समझ में आती हैं। मैं सचमुच बहुत गलत था, लेकिन भगवान का शुक्र है। और पॉल के मामले में ईश्वर को धन्यवाद। अपनी बुलाहट से पहले वह टोरा के प्रति समर्पित थे। उसने ऐसे उत्साह की खोज की जो उसे गलत रास्ते पर ले गया। हालांकि उनका कहना है कि समस्या उनके पत्रों में टोरा ही नहीं थी, यह कानून नहीं था, यह धर्म ग्रंथों में ईश्वर का निर्देश नहीं था, समस्या मांस थी। हम सीमित प्राणी हैं, हम प्रलोभन, अभिमान, लोभ, किसी भी चीज के प्रति संवेदनशील और संवेदनशील हैं। लिखित टोरा हमें नहीं बचाता, पॉल को विश्वास हो गया। केवल ईश्वर ही हमें धर्मी बना सकता है। हमें अपने दिलों में लिखी गई टोरा की जरूरत है। खैर, इसका अन्य यहूदी लोगों द्वारा सिखाई गई बातों से क्या संबंध है? खैर, यह इस पर निर्भर करता है कि आप यहूदी धर्म के किस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, सदूकी फरीसियों से बिल्कुल अलग विचार रखते थे, लेकिन पॉल समय समय पर कुछ तदर्थ तर्कों का उपयोग करता है। 1 कुरिन्थियों 11 सिर ढकने के बारे में वह वहां विभिन्न प्रकार के तर्कों का उपयोग करता है, और अंत में उनका अंतिम तर्क है, ठीक है, यदि आप मेरे किसी भी अन्य तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं तो यह ठीक उसी तरह है जैसे पूर्वी भूमध्य सागरीय दुनिया के चर्चों में किया जाता है। गलातियों 3:16 पॉल इस तथ्य के आधार पर एक तर्क देता है कि शुक्राणु बीज एक वचन है, लेकिन पॉल अच्छी तरह जानता है कि यह सामूहिक एक वचन हो सकता है, अर्थात यह एक से अधिक का उल्लेख कर सकता है, क्योंकि बाद में पद 29 में गलातियों 3:29 के यूनानी पाठ में पॉल वास्तव में यह कहकर इसका उपयोग करता है, आप जानते हैं, हम इब्राहिम के वंश हैं, हम इब्राहिम के बच्चे हैं। इसलिए पॉल कभी कभी विवादास्पद संदर्भों में तदर्थ तर्कों का उपयोग करता है, उदाहरण के लिए जहां वह दूसरों को संबोधित कर रहा है जो उसके खिलाफ इस तरह के तर्कों का उपयोग करते हैं। ये प्राचीन काल में आम थे। यह इस बात का मॉडल नहीं है कि आप हर स्थिति में इसी तरह बहस करते हैं, लेकिन पॉल ने उन सेटिंग्स में इस तरह से तर्क दिया जहां उस तरह के तर्क का उपयोग किया गया था, और इससे उसका धर्मशास्त्र नहीं बदलता। उनका धर्मशास्त्र व्याख्यात्मक रूप से बहुत अच्छी तरह से आधारित हो सकता है, लेकिन लोगों को मनाने में वह उन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें राजी कर सकें। 1 कुरिन्थियों 11 में उनका पहला तर्क शब्दों पर एक नाटक से संबंधित है, जहां वह केफले सिर के आलंकारिक और शाब्दिक अर्थ दोनों का उपयोग कर रहे हैं। इस बात पर बहस चल रही है कि आलंकारिक अर्थ क्या है, जिसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि वह आपकी गर्दन के ऊपर मौजूद चीज के आलंकारिक अर्थ और शाब्दिक अर्थ दोनों के साथ शब्दों के खेल का उपयोग करता है। उस समय लोग अक्सर इसी तरह का तर्क देते थे, तो कभी उनका कैरिकेचर होता है। रोमियो 2:17-24 में वह कहता है, हे व्यभिचार के विरुद्ध बोलने वालों, क्या तुम व्यभिचार करते हो? तुम जो मूर्ति पूजा के विरोधी हो, क्या तुम मंदिरों को लूटते हो? अधिकांश यहूदी लोग मंदिरों को लूटने नहीं जाते थे। अधिकांश यहूदी लोगों ने व्यभिचार नहीं किया, हालांकि कुछ ने किया। पॉल एक कैरिकेचर बना रहा है। वह वही कर रहा है जिसे तर्क वितर्क में कभी कभी रिडक्टियो एड एब्सर्डम कहा जाता है, जिससे आपके प्रतिद्वंद्वी की स्थिति बेतुकी हो जाती है। यह वस्तुतः सभी यहूदी लोगों पर लागू नहीं होता है, लेकिन इससे यह स्थिति बनती है कि आप केवल यहूदी धर्म पर निर्भर नहीं रह सकते। रोमन 3:10-20 में उन्होंने जिन भजनों का हवाला दिया है वे प्रत्येक यहूदी व्यक्ति की निंदा करने के लिए बहुत सामान्य हैं। अब इससे उनका अंतिम बिंदु नहीं बदल जाता कि सभी लोगों ने पाप किया है। उनके द्वारा उपयोग किए गए कुछ पाठ यह दावा करते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें वास्तव में यह तर्क देने की भी आवश्यकता नहीं थी कि हर किसी ने पाप किया है, क्योंकि लगभग सभी यहूदी लोगों ने स्वीकार किया कि सभी ने पाप किया है। संभावित अपवाद के साथ कुछ ने कहा कि शायद अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, परंतु उन सब ने स्वीकार किया कि उन्होंने पाप किया है। लेकिन विवादास्पद बयानबाजी वह तर्कपूर्ण, बहुत मजबूत तर्कपूर्ण बयानबाजी थी जिसका उपयोग आप किसी की स्थिति का खंडन करने के लिए करते हैं। वाद विवाद सेटिंग में यह मानक था। आपके पास उसी तरह की चीज है जहां जॉन द बैप्टिस्ट भगवान के बारे में बात करता है जो इब्राहिम के लिए इन बच्चों के लिए पत्थर उठा सकता है। खैर, पॉल ईश्वर द्वारा इब्राहिम के लिए बच्चों, इब्राहिम के लिए आध्यात्मिक बच्चों के पालन पोषण की बात करता है। आपके पास यह जॉन अध्याय 8 में भी है। यह एक ऐसा मुद्दा था जिस पर पॉल के आने से पहले ही बहस हो रही थी, और पॉल उस मामले पर इस तरह से बहस करता है कि ग्रीको रोमन दुनिया में श्रोता अधिक पूरी तरह से समझ सकें। पॉल की अपनी विरासत का मजाक उड़ाया गया और उस पर विवाद किया गया। रोमियो अध्याय 3:8 में वह कहता है कि कुछ लोग थे जिन्होंने उसके बारे में शिकायत की और कहा कि उसने सिखाया है कि पाप करो ताकि अनुग्रह प्रचुर मात्रा में हो, जो निश्चित रूप से वह नहीं था जो पॉल सिखा रहा था। हालांकि कुछ लोग आज भी पॉल के नाम पर उस शिक्षा का पालन करते हैं। जेम्स अध्याय 2:18-24 में कई विद्वान सोचते हैं कि जेम्स पॉल की शिक्षा के बारे में उनकी गलत व्याख्या का खंडन कर रहा है। इसलिए विवादास्पद संदर्भ में हमारे पास चीजों को एक निश्चित तरीके से दर्शाया गया है, और पॉल ने यीशु के समय से चली आ रही ठोस शिक्षा, पुराने नियम से चली आ रही ठोस शिक्षा को आगे बढ़ाया। लेकिन जिस तरह से वह इसे फ्रेम करता है, कभी कभी वह उसी तरह से होता है जैसे कि उसके समय में इसे फ्रेम किया जाता था। ईपी सैंडर्स ने तर्क दिया है कि यहूदी धर्म के प्रति पुराने यहूदी विरोधी दृष्टिकोण, जो इसे प्रारंभिक ईसाई धर्म में ईश्वर की कृपा के लिए एक बाधा बनाते थे, निराधार थे, और वह इसे एक निश्चित देश में एक निश्चित संप्रदाय जर्मन लूथरन के साथ जोड़ता है। और यह वह जगह नहीं है जहां सभी जर्मन लूथरन आज खड़े होंगे, और मुझे यकीन नहीं है कि यह सभी जर्मन विद्वानों के लिए उचित है। खैर, यह सभी जर्मन विद्वानों के लिए उचित नहीं है, सभी लूथरन के लिए उचित नहीं है। लेकिन याद रखें, ईपी सैंडर्स प्रलय के बाद की पीढ़ी में लिख रहे हैं, और वहां के अधिकांश चर्च को नीचा दिखाया जा रहा था, आधिकारिक चर्च, विशेष रूप से एक बार जब यह रीच चर्च बन गया तो यीशु के यहूदीपन को कम करके दिखाया जा रहा था। गेरहार्ड किटेल, यदि आपने न्यू टेस्टामेंट के धर्मशास्त्रीय शब्दकोश के बारे में सुना है तो इसका एक कारण है कि उन्होंने इसके केवल पहले 2 या 3 खंडों का ही संपादन किया, क्योंकि उन्होंने अपना शेष जीवन नाजी युद्ध अपराधी के रूप में घर में गिरफ्तारी के तहत बिताया। कुछ नाजी धर्मशास्त्री यीशु के यहूदीपन को कम करके आंक रहे थे। किटेल एक रब्बीनिक विशेषज्ञ थे, लेकिन उन्होंने नाजी पार्टी की भी सेवा की। इसलिए जिन लोगों ने पॉल के यहूदीपन को कम करने की कोशिश की और ईसाई धर्म कितना बेहतर है इसके लिए यहूदी धर्म को भी एक माध्यम के रूप में पेश करने की कोशिश की, उन्होंने अक्सर यहूदी धर्म को गलत तरीके से प्रस्तुत किया। हम उनमें से कुछ को स्ट्रैक और बिलरबेक में भी पाते हैं। यह रब्बी स्रोतों या रब्बी विशेषज्ञों की उतनी गलती नहीं थी जितना कि इसे नए नियम में लागू किया गया था। इसलिए यहूदी धर्म एक बहुत ही कानूनी धर्म बन गया जहां आप हमेशा भगवान के सामने अधिक योग्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक हिस्सा लूथर तक भी जाता है, जो खुद को पॉल की तरह देखता है, जो मध्ययुगीन चर्च के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया में यहूदी धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब हम प्राचीन यहूदी स्रोतों पर वापस जाते हैं तो हमें वास्तव में कुछ कानूनी वाद मिलता है। मुझे लगता है कि मेरे गुरु ईपी सैंडर्स ने शुरुआत में जितना स्वीकार किया था उससे कहीं अधिक। अन्य लोगों ने इस ओर इशारा किया है, लेकिन जिन लोगों ने इस ओर इशारा किया है उन्होंने भी स्वीकार किया है कि ईपी सैंडर्स ने अपने समय में व्यापक रूप से मौजूद मामलों की स्थिति की आलोचना करना सही था, जो कि बहुत ही यहूदी विरोधी था। और जो हम सैंडर्स के काम में देखते हैं और अन्य लोगों ने इसे योग्य बनाया है वह यह है कि यह बोर्ड के पार नहीं है, लेकिन प्रारंभिक यहूदी धर्म में जितनी मान्यता दी गई है उससे कहीं अधिक अनुग्रह था। ऐसी मान्यता थी कि यहूदी लोग वाचा के हिस्से के रूप में पैदा हुए थे, वाचा के हिस्से के रूप में खतना किया गया था और वे वाचा के लोगों का हिस्सा बने रहे जब तक कि वे बहुत बुरे नहीं थे। खैर, यदि आप गैर यहूदी हैं और आप यहूदी धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, तो आपको थोड़ी अधिक परेशानी होगी क्योंकि अब आपको एक धर्मांतरित व्यक्ति के रूप में वाचा के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी होगी। इसके अलावा सिर्फ इसलिए कि लोग सैद्धांतिक रूप से अनुग्रह पर जोर दे रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वे व्यवहार में कभी भी कानूनी नहीं हैं। मेरा मतलब है आज हमारे पास बहुत सारे चर्च हैं जो अनुग्रह की बात करते हैं लेकिन कानूनवाद का पालन करते हैं, जिसका अर्थ है कि यह विशेष रूप से यहूदी समस्या नहीं है, यह एक धार्मिक समस्या है। दिलचस्प बात यह है कि ल्यूक के सुसमाचार में यीशु को फरीसियों का सामना करना पड़ता है कभी कभी कानूनी प्रकार के मुद्दों पर, और आप अधिनियमों की पुस्तक में जाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि अधिनियमों के अध्याय 11 में फरीसियों की बात कौन कह रहा है। यह नहीं कि तुमने जाकर पापियों के साथ खाया, परंतु तुमने जाकर अन्य जातियों के साथ खाया। उसी तरह का विचार चल रहा है। तो इस तथ्य के बीच कि पॉल रिडक्टियो एड एब्सर्डम का उपयोग करने जा रहा है, वह चीजों को उनकी अधिकतम सीमा तक ले जा रहा है, और यह तथ्य भी कि व्यवहार में कुछ कानूनी वाद है, और यह तथ्य भी है कि लोग हमेशा सिद्धांत रूप में नहीं होते हैं, वे कागज में हैं। मेरा मतलब है कई चीजों में जहां यीशु सुसमाचार में फरीसियों के साथ बहस करते हैं, हम जानते हैं कि फरीसी वास्तव में अपनी नैतिकता में सैद्धांतिक रूप से उनसे सहमत थे, लेकिन सिद्धांत रूप में यीशु से सहमत होना एक बात है, उनकी तरह जीना दूसरी बात है, यीशु कहते हैं, और यह दया की भावना को मूर्त रूप देना और टोरा के प्रति यीशु की तरह की व्याख्यात्मकता है जिसे हम गॉस्पेल में पाते हैं। तो इतना ही कहना है कि कुछ लोगों के विपरीत मुझे नहीं लगता कि एक बार जब हम यह पहचान लेते हैं कि यहूदी धर्म में बहुत अधिक अनुग्रह था तो हमें पॉल की मौलिक रूप से पुनर्व्याख्या करनी होगी, लेकिन हमें यह भी पहचानने की आवश्यकता है कि मुद्दा जातीय नहीं है, मुद्दा कि समस्या यह थी कि वे यहूदी थे और यदि हम अन्य जाति हैं तो हमें समान प्रलोभनों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि पॉल रोमियो अध्याय 11 में उस मुद्दे से निपटता है। मुद्दा यह है कि हमारी धार्मिक प्रवृत्तियां जो भी हों, जब हम उपयोग करते हैं स्वयं की सेवा में धर्म मसीह में ईश्वर के रहस्योद्घाटन को स्वीकार करने के बजाय जो हमें ईश्वर के साथ रिश्ते में लाता है, हम ईश्वर ने हमारे लिए जो किया है उसे भूल रहे हैं, क्योंकि हमारा हाथ बहुत छोटा है, हम खुद को नहीं बचा सकते, यह प्रभु ही है हमें बचाता है। रोमनों की स्थापना। पॉल ने यह पत्र कोरिन्थ से लिखा है और यह वास्तव में फोएबे द्वारा दिया गया है जो डायकोनोस है, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन सेंखरिया में चर्च के डायकोनोस, जो कि कोरिंथ के दो बंदरगाह शहरों में से एक है, कोरिंथ का इस्तमुस। पॉल कोरिंथ से लिखता है और फीबी द्वारा यात्रा करते समय इसे भेजता है, रोमियो 16:1। यह अचिया में उनके शीतकालीन प्रवास के दौरान हुआ होगा। इसका वर्णन अधिनियम अध्याय 20 श्लोक 2 और 3 में किया गया है। उनका रोम से भी संबंध है, क्योंकि क्लॉडियस के तहत वर्ष 49 के आसपास कई यहूदी ईसाइयों को रोम से निष्कासित कर दिया गया था। जब क्लॉडियस की वर्ष 54 में मृत्यु हो गई, शायद एक साल के भीतर, 2 साल या पॉल द्वारा रोमन लिखने से पहले वे वापस लौट आए। इसके अलावा कोरिंथ के रोम के साथ प्रमुख संबंध थे, जिसमें बहुत सारा व्यापार आता जाता था। कोरिंथ एक प्रमुख रोमन उपनिवेश था और यह इटली और एशिया माइनर के बीच प्रमुख समुद्री नाली थी। अखाया का दक्षिणी तट बहुत ऊबड़ खाबड़ था और वहां नेविगेट करना मुश्किल था, इसलिए लोग अक्सर वहीं चले जाते थे जहां पेलोपोनेसस था। वे कोरिंथ के इस्तमुस की ओर रवाना हुए थे और इस्तमुस के अंदर से बाहर एजियन सागर तक चीजों को ले जाने का एक साधन था। वे इस्तमुस के माध्यम से एक नहर बनाने में अभी तक सफल नहीं हुए थे, लेकिन उनके पास अल्कोस्ट्स नामक कुछ था और वे चीजों को खींच सकते थे, दूसरी तरफ जहाजों को आपूर्ति कर सकते थे। इस अवधि में रोम की जनसंख्या, कुछ लोगों ने पानी की आपूर्ति के कारण 4.25 मिलियन तक कम होने का अनुमान लगाया है। प्राचीन जनगणना रिकॉर्ड वास्तव में सुझाव देते हैं, जब आप उन लोगों का भी हिसाब लगाते हैं जिनका जनगणना में विशेष रूप से नाम नहीं है या जनगणना रिकॉर्ड में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, परिवार, दास, तो रोम के निवासियों की संख्या शायद इसमें करीब है लगभग 10 लाख की अवधि, जिसका अर्थ है कि यह भूमध्य सागरीय पुरातनता का अब तक का सबसे बड़ा शहर था। अलेक्जेंड्रिया शायद दूसरे स्थान पर था, शायद लगभग 0.5 मिलियन, संभवतः। रोम में बहुत सारे मकान थे। अमीर लोग सबसे नीचे रहते थे, गरीब ऊंची ऊपरी मंजिलों में रहते थे और वे अक्सर निचली मंजिल पर रहते थे। कभी कभी आपके पास मेजेनाइन अपार्टमेंट वाली दुकानें होती थीं, साथ ही नीचे अमीर निवासी भी रहते थे। तल मूल्यवान था, क्योंकि आपके पास केवल निचली मंजिल पर बहता पानी था। आपके पास ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां होंगी, लेकिन कभी कभी ऊपरी मंजिलें बहुत जर्जर होती थीं। आपके पास छोटे कमरे होंगे, बस सोने के लिए पर्याप्त जगह होगी, और आपके पास कुछ स्थानों पर चारकोल ब्रेजियर हो सकता है। शायद यही एक कारण है कि वे रोम में प्रतिदिन आग लगने, इमारतों के जलने, इमारतों के ढहने की सूचना देते हैं। किसी ने इसका मजाक उड़ाया। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मजाकिया है, लेकिन जुवेनल मजाक कर रहा था कि रोम में इमारतें कैसे ढह गईं। आप उन्हें हर दिन कहीं न कहीं गिरते हुए सुनेंगे। वे अक्सर अमीर जमींदारों के स्वामित्व में होते थे। कभी कभी वे निचली मंजिल पर रहते थे, लेकिन जितना ऊपर वे जाते थे, स्थिति उतनी ही खराब होती जाती थी। वहां चर्च कहां मिल सकते थे? खैर, वे निचली मंजिल पर मिल सकते थे। वे उस दालान में मिल सकते थे जो कमरों और कुछ ऊपरी मंजिलों को जोड़ता था। तो ऐसी जगहें थीं जहां वे मिल सकते थे। रोम की जनसंख्या में यहूदी निवासियों की संख्या 5% तक हो सकती है। टिबेरियस के निष्कासन के आधार पर इसकी यहूदी आबादी लगभग 20,000 और 50,000 निवासियों के बीच अनुमानित की गई है, अक्सर 40,000 से 50,000 के आसपास, यानी रोम की आबादी का 5%। यहूदी समुदाय की स्थापना, रोम में अधिकांश यहूदी लोग ट्रांस-तिबेरियम में रहते थे। आज इसे ट्रेस्टवेर कहा जाता है। मैं इटालियन नहीं बोल सकता, इसलिए मुझे आशा है कि आप वहां मेरे उच्चारण के लिए मुझे माफ कर देंगे, खासकर यदि आप इटली से हैं। लेकिन शहर के केंद्र से तिबर के उस पार वह स्थान है जहां अधिकांश यहूदी समुदाय रहते थे। रोम के अधिकांश यहूदी निवासी गरीब थे। कईयों ने संभवतः तिबर की गोदी में काम किया होगा। वहां अनेक आराधनालय थे। जाहिर है यदि आपके पास इतने सारे लोग हैं तो आपके पास बहुत सारे आराधनालय होने चाहिए। इस काल के कई आराधनालयों को हम उनके नाम से जानते हैं। उनमें से एक जैतून के पेड़ जैसा कुछ है जो शायद रोमियो 11 के लिए प्रासंगिक है, हालांकि हम आमतौर पर उन तारीखों को नहीं जानते हैं जब ये विशेष आराधनालय शुरू हुए थे। लेकिन अलेक्जेंड्रिया में आराधनालय समुदाय के विपरीत रोम में आराधनालय समुदाय बिल्कुल भी एकजुट नहीं था, और वे हो भी नहीं सकते थे क्योंकि रोम नहीं चाहता था कि कोई भी अपने शहर में एकजुट हो जब तक कि उदाहरण के लिए प्रेटोरियन गार्ड या स्थानीय पुलिस बल न हो। यूनानी भाषी आप्रवासी और निवासी एलियंस बड़ी संख्या में वहां थे। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि सभी सड़कें रोम तक जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रोमनों ने सभी सड़कें बनाई। लेकिन पूरे साम्राज्य से प्रवासी भारतीयों के कई हिस्सों से लोग रोम में आने लगे। वहां यहूदी समुदाय भी बड़े पैमाने पर यूनानी भाषी था। वास्तव में दूसरी शताब्दी तक वहां चर्च मुख्यतः ग्रीक भाषी था। फर्स्ट क्लेमेंट एक यहूदी, उदाहरण के लिए पहली शताब्दी के उत्तरार्ध का एक ईसाई दस्तावेज ग्रीक में लिखा गया है। प्रवासी भारतीयों के कई हिस्सों से ग्रीक भाषी अप्रवासी वहां के यहूदी समुदाय के लिए उनमें से आधे से अधिक के लैटिन नाम हैं। इसलिए वे संस्कृति के साथ अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, भले ही ग्रीक उनके बीच बहुसंख्यक भाषा थी। रोम में कई रोमन नागरिक यहूदी थे। अलेक्जेंड्रिया के फिलोने गयुस के अपने दूतावास में हमें यह स्पष्ट रूप से बताया है। और शायद इनमें से कई नागरिक उन लोगों के वंशज थे जिन्हें पोम्पेई ने गुलाम बना लिया था। पोम्पेई का मतलब उस शहर से नहीं है जो इस शताब्दी के अंत में माउंट वेसुवियस के विस्फोट के समय हरकुलेनियम के साथ दफन हो गया था, बल्कि पोम्पेई पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन जनरल थे। पोम्पेई ने कई यहूदियों को गुलाम बनाया और उन्हें रोम ले आया। रोम में रहने वाले यहूदी लोगों ने अपना सारा धन इकट्ठा कर लिया। उन्होंने इन अन्य यहूदी लोगों की स्वतंत्रता खरीदी। और यदि आप किसी रोमन नागरिक के आजाद गुलाम थे तो सामान्य परिस्थितियों में आप रोमन नागरिक बन गए। यह संभवत बहुत समय पहले पॉल के अपने वंश की पृष्ठभूमि है कि कैसे पॉल रोमन नागरिक बन गया, जिसके बारे में हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन सबसे पहले रोमन ज़ेनोफोबिया पर ध्यान दें। रोम के लोग सब्बात, खतना और खाद्य उत्पादों से घृणा करते थे। वास्तव में कुछ रोमन वास्तव में यहूदी प्रथाओं को पसंद करते थे और उन्हें अपना रहे थे, लेकिन इसने अन्य रोमनों के बीच, विशेष रूप से कुलीन वर्ग के बीच, विशेष रूप से कुलीन पुरुषों के बीच एक प्रतिक्रिया पैदा की जो इस बात से परेशान थे कि उनकी कुछ पत्नियां इस सर्वोच्च ईश्वर के लिए कुछ यहूदी प्रथाओं का पालन कर रही थीं, जिनमें शामिल हैं विश्राम दिन और कुछ भोजन प्रथाएं। खतना को वे अंगभंग का एक रूप मानते थे। और हमने इस अवधि के यहूदी साहित्य के विभिन्न संग्रहों में इसके बारे में पढ़ा। प्राचीन काल में यहूदियों के बारे में गैर यहूदी लेखन पर मेनाकेम स्टर्न के काम जैसे साहित्य, टिबेरियस और क्लॉडियस के तहत यहूदी समुदाय को भी निर्वासित किया गया था। यह मानने का कारण है कि निर्वासन कम से कम क्लॉडियस के तहत थोक निर्वासन नहीं था या पूरी तरह से प्रभावी नहीं था। लेकिन किसी भी मामले में यहूदी समुदाय को निर्वासित कर दिया गया था। इसलिए वहां यहूदी समुदाय के प्रति कुछ पूर्वाग्रह थे। रोमन इतिहास और वहां का चर्च। क्लॉडियस ने यहूदी ईसाई नेताओं और संभवतः कई अन्य लोगों को निष्कासित कर दिया। हम अगले सत्र में थोड़ी देर में इसके बारे में और अधिक बात कर सकते हैं। लेकिन क्लॉडियस ने वर्ष 49 या संभवतः 49 में यहूदी ईसाई नेताओं को निष्कासित कर दिया। कुछ लोग 41 कहते हैं, लेकिन 49 सोचने का बेहतर कारण है। इसे स्वचालित रूप से निरस्त कर दिया गया था, जैसा कि अन्य आदेश वर्ष 54 में उनकी मृत्यु के बाद होंगे। इसलिए 5 साल के बाद यीशु में कुछ यहूदी विश्वासी रोम लौट सकते थे और अन्य यहूदी विश्वासी रोम आ सकते थे। वर्ष 64 में नीरो यहूदी ईसाइयों के रोम लौटने के 10 साल बाद और क्लॉडियस द्वारा यहूदी ईसाई नेताओं को निष्कासित करने के लगभग 15 साल बाद संभवतः मुख्य रूप से गैर यहूदी चर्च को छोड़कर। वर्ष 64 में नीरो ने रोम में सैकड़ों या हजारों ईसाइयों का नरसंहार किया। फिर भी चर्च उस समय भी मजबूत प्रतीत होता है जब एक क्लेमेंट पहली शताब्दी के अंत में लिखा गया था। तो जिस समय पॉल ने यह पत्र लिखा उस समय रोम में एक संपन्न चर्च रहा होगा, हालांकि हाल ही में कुछ यहूदी ईसाइयों ने लौटना शुरू कर दिया है। इसे आमतौर पर अधिकतर गैर यहूदी चर्च माना जाता है। ऐसा लगता है कि शुरुआत में इसका कोई यहूदी आधार या यहूदी आधार था, जहां उन्हें यहूदी तरीकों से पढ़ाया जाता था, और इसके कई कारण हैं। फिर भी रोम में यहूदी धर्म प्रसिद्ध है। लेकिन अगले सत्र में हम रोमनों में जो कुछ पाते हैं उसका एक सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। फिर हर बिंदु पर हर कोई सहमत नहीं होगा। हर कोई हर उस बिंदु पर भी सहमत नहीं होगा जिसका मैंने अभी रोम में चर्च के इतिहास के सारांश में उल्लेख किया है। लेकिन कम से कम आपको इस बात की अच्छी समझ हो जाएगी कि रोमन किस बारे में हैं और रोमनों को लिखे पत्र का इतिहास, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ क्या था। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह सत्र एक परिचय है।